पेश है आज के मुख्य समाचार रशारी जैन के साथ। 5 हफ्ते के अंतराल के बाद मिलने पर राष्ट्रीय कैबिनेट से अस्पतालों के लिए अधिक फंडिंग की मांग। दिवाली के मौके पर दिल्ली की हवा हुई गंभीर रूप से प्रदूषित। और NBA ने फीनिक्स सन्स के मालिक के खिलाफ आई महिला रोधी और नस्ल भेदी शिकायतों की जाँच की शुरू। और अब खबरें विस्तार से। ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन की नवीनतम रिपोर्ट में पाया गया है कि देश भर में लॉकडाउन खुलने के बाद भी कई ऑस्ट्रेलियाई अब भी सामयिक चिकित्सा से दूर हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा संस्था ने अपना नवीनतम पब्लिक हॉस्पिटल रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इस रिपोर्ट में आपातकालीन विभाग में इंतजार के समय और सर्जरी में देरी की गंभीर समस्या पर प्रकाश डाला गया है। 2020 के दौरान लगे लॉकडाउन के समय पर भी अस्पतालों में क्षमता से अधिक कार्यभार रहा था। अकेले ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में ही केवल 3 में से 1 आपातकालीन चिकित्सा चाहने वाले व्यक्तियों को आधे घंटे के अंदर अंदर सेवाएं मिल सकती हैं। ABC ब्रेकफास्ट से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर ओमर खुर्शीद का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में सभी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता नहीं है।
When it comes to emergency departments, it's ACT at the bottom of the pile. And the sad thing about this report is it really does show, as it does each year, how much it matters where you live in Australia as to what access to public hospitals you have. When it comes to elective surgery waiting lists, it's Tasmania that has the worst performance in our report card this year, and certainly for a little while.
फेडरल लेबर लीडर एंथनी अल्बनीजी ने फेडरल सरकार से राज्यों और उपराज्यों के लिए बेहतर सहयोग की मांग की है।
And as we open up safely, we need to make sure that the appropriate facilities are put in place, and they should provide additional hospital funding across Australia today.
विक्टोरिया में आज 1,343 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में आज 10 मृत्यु भी दर्ज की गई हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि राज्य में इस समय 18,952 सक्रिय कोरोना मामले हैं। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक 634 COVID-19 मरीजों को अस्पताल में चिकित्सा मिल रही है, जिनमें से 109 गहन चिकित्सा केंद्र में हैं। उधर न्यू साउथ वेल सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य अधिकारी मूर शहर में हुए कोरोना प्रकोप की जांच कर रहे हैं। मूर प्लेन्स शायर में 33 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रकोप की शुरुआत पिछले हफ्ते हुए एक अंतिम संस्कार से जुड़ी है। न्यू साउथ वेल्स में आज 249 नए मामले और 3 मृत्यु दर्ज की गई हैं। मुअर की मेयर कैटरीना हम्फ्रीज ने निवासियों से स्वेच्छा से ही लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में घर पर ही रहने का आग्रह किया है। क्वींसलैंड की प्रीमियर अनास्तासिया पलाशे का कहना है कि मुअर को प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र में गिना जाएगा।
We will try and get supplies to those communities in New South Wales rather than having to cross to get supplies into Queensland. We'd like to put this in place for the next 7 days. It's really important to make sure that we ensure the safety of those townships across our Queensland border.
New South Wales और Victoria के border खुलने के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा चलने वाले हवाई रास्तों में से एक अब वापस परिवारों को जोड़ सकेगा। न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे और विक्टोरिया प्रीमियर डैनियल एंड्रूज ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर बदलावों की सूचना दी, जो आज यानी शुक्रवार से लागू होंगे। विक्टोरिया ने न्यू साउथ वेल्स के सभी स्थानीय सरकारी क्षेत्रों को ग्रीन जोन घोषित कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब न्यू साउथ वेल्स निवासियों के लिए विक्टोरिया यात्रा में कोई भी संगरोध या टेस्टिंग अनिवार्य नहीं होंगे। हालांकि यात्रियों को अब भी एक परमिट की आवश्यकता होगी, जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि उन्हें COVID-19 नहीं है। श्री पेरोटे ने सिडनी के रेडियो 2GB से बात करते हुए कहा कि यह परिवारों और व्यवसायों दोनों के लिए ही एक सकारात्मक बदलाव है।
It's a great thing for people who want to be reunited for holiday and business, because it's one of the busiest routes in the world between Sydney and Melbourne, so we're slowly getting back to normality.
सुश्री ब्रिटनी हिगिंस के साथ हुए दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति का अब मुकदमा शुरू होगा। 26 वर्षीय ब्रूस लेहरमैन ने अर्जी दी थी कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और यह कि उन्होंने 2019 में संसद भवन में बिना सहमति कोई शारीरिक संबंध नहीं स्थापित किए थे। अब उनकी पेशी ACT की मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। उनका मामला उपराज्य की सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को पेश किया जाएगा। न्यू साउथ वेल्स के पूर्व डिप्टी प्रीमियर जॉन बैरिलारो का कहना है कि उन्होंने एक हास्य कलाकार के साथ चल रहे मानहानि के मामले को अदालत के बाहर सुलझा लिया है। श्री बैरिलारो को फ्रेंडली जॉर्डीज रचयिता जॉर्डन शैंक्स से कोई हर्जाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन हास्य कलाकार ने उनसे क्षमा याचना की है। श्री बैरिलारो ने फेडरल अदालत में श्री शैंक के यूट्यूब चैनल पर 2020 में प्रकाशित हुए दो वीडियो, जिन्हें श्री बैरिलारो ने नस्ल भेदी बताया था, पर से अपना मुकदमा वापस ले लिया है। श्री शैंक्स ने कहा है कि वे श्री बैरिलारो पर आधारित उनकी सभी सामग्री अब नहीं बेचेंगे। सरकार से मांग की जा रही है कि वे अव्यवस्थित फॉस्टर केयर, जहां बच्चों की देखभाल उनके रिश्तेदार करते हैं, की और जिम्मेदारी लें। अधिवक्ताओं का कहना है कि बिना पर्याप्त सहायता के दादा दादियों को या नाना नानियों को अपने सुपर एनुएशन में से पैसा निकालना पड़ रहा है और किशोरों को अपनी पढ़ाई स्थगित कर अपने से छोटों का ख्याल रखना पड़ रहा है। पीक केयर क्वींसलैंड की कार्यकारी निदेशक लिंसे वेगनर का कहना है कि विविध समुदायों और इंडिजिनस परिवेश के लोगों में सहायता मांगने में झिझक हो सकती है।
Very sensible and understandable reasons about being suspicious about approaching child welfare agencies for support. So they do not wish to draw attention to themselves and ask for any kind of help that they may require. So we're sure that they're very much overrepresented in these numbers. But many of similar circumstances exist for other cultural groups as well, who also have that investment in extended family caring for their own.
ऑस्ट्रेलिया में शहरों में टीकाकरण की दर भले ही ऊंची हो, लेकिन ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में अब भी टीकाकरण सुस्त गति से चल रहा है। ऑस्ट्रेलियन रॉयल फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस अब इन इलाकों में 50,000 से अधिक कोरोना रोधी टीकों की खुराकें पहुंचाने में मदद कर रहा है। डॉक्टर डॉनियल वाटर्स ग्रामीण क्वींसलैंड में कार्यरत हैं और कहते हैं कि लोग लापरवाही बरत नहीं सकते हैं।
We can't keep COVID out forever. We're going to have to open up. I think the vaccinated will be largely all right, and I think the unvaccinated will be in a bad way. It's going to have implications for the flying doctors as well for these remote areas, because there's going to be cases of COVID, there's going to be people needing hospitalisation, and we're going to have to fly them in full PPE down to the appropriate facility, which I'm not really looking forward to be honest.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीन की पहचान की है जिससे COVID-19 से फेफड़ों के खराब होने और मृत्यु की संभावनाएं दोगुनी हो जाती हैं। ये जीन खासकर दक्षिण एशियाई मूल के लोगों में करीब 60% लोगों में पाया जाता है। यह जीन फेफड़ों के भीतर की कोशिकाओं को COVID-19 से ठीक तरह से निपटने नहीं देता। नेचर्स जेनेटिक स्टडी कहती है कि इस शोध से यह समझने में आसानी होगी कि कुछ समुदायों में दूसरे समुदायों से अधिक कोरोना मृत्यु दर क्यों है। उनका यह भी कहना है कि टीकाकरण से यह खतरा बहुत हद तक कम हो सकता है। और अब खबरें भारत से। भारत की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के वातावरण में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है, क्योंकि लोगों ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए सरकार के प्रतिबंध की घोर अवहेलना की है। हवा में प्रदूषण का दूसरा कारण हर साल की तरह पराली जलाने का भी है। दिवाली के दिन यानी गुरुवार को दिल्ली के प्रदूषण स्तर में पराली जलाने का योगदान बढ़कर 25% हो गया, जो इस मौसम का अब तक का सर्वाधिक स्तर है। अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI मध्य रात्रि तक गंभीर की श्रेणी में पहुंच गया था और पटाखे जलाए जाने की सूरत में शुक्रवार तक प्रदूषण का स्तर और भी अधिक बढ़ेगा। भारत में COVID-19 के मामले अब लगातार घट रहे हैं। भारत में कल COVID-19 के 12,885 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,38,579 हो गई है, जो पिछले 253 दिनों में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार इस संक्रमण से कल के दिन 461 लोगों की मृत्यु भी हुई है। देश में लगातार 27 दिन से कोविड 19 के दैनिक मामले 20,000 से कम बने हुए हैं। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.23% है, जो मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी शुक्रवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 54.98 और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 74 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। NBA ने महिला रोधी और नस्ल भेद की शिकायतों पर फीनिक्स सन्स टीम्स के मालिक रॉबर्ट सर्वर पर जांच बिठाई है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार ESPN ने 70 से अधिक पूर्व और मौजूदा सन्स फ्रेंचाइज के कर्मचारियों के आरोपों की सूची तैयार की है। NBA प्रवक्ता माइक बास का कहना है कि ये गंभीर आरोप है। श्री सर्वर ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। और अंत में कल यानी शनिवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर एक नजर। पर्थ में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। एडिलेड में कल बरसात की आशंका जताई जा रही है। यहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल उमस और दिन ढलने के साथ बारिश तेज होने के आसार हैं। यहां अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में कल दिन भर हल्की बारिश रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 22 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री रह सकता है। सिडनी में भी कल छिटपुट बूंदाबांदी के आसार है। यहां अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में भी हल्की बारिश की आशंका है। यहां तापमान 25 डिग्री अधिकतम जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में तेज बारिश के साथ तूफान की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप छांव बने रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।